ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات كلت الألسن عن غاية صفته والأقول عن كنه معرفته والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
محمد وعجل فرج أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، خليفة الرحمن، إمام الإنس والجان، الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشریف. انسانی معاشرے کی تمام مشکلات کا حل اللہ کے ولی کا دنیا میں ظاہر ہونا ہے انشاءاللہ. تمام مشکلیں حل ہو سکتی ہیں، خصوصاً جو بیماریوں سے گزر رہا ہے انسان. دعا کریں کہ جلد سے جلد مولا کا ظہور ہو. اور دوسری، جو اخلاقی اور ظلم جو ہو رہا ہے دنیا میں، اس کا تدارک بھی ہو. جسمانی اور فکری تیاری کے ساتھ دعا بہترین وسیلہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك لحجة ابن الحسن صلواتك وعلى آبائه في هذه الساعة وليا وحافظا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على وعجل فرجهم. پھر یہ قرآنی دعا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم كثيرا ممن خلقنا تفضيلا. صلوات پڑھی محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وعجل فرجهم. کرامت انسان موضوع ہے، اور موضوع کی تفہیم و تشریح مسلسل کوشش کی جا رہی کہ سمجھیں، اس لیے کہ قرآنک ٹرمنالوجی کا سمجھنا ایک آسان کام نہیں ہے. اردو میں اس کا پیرلل نہیں ہے، نہ ہی ادر لینگویجز. ٹرانسلیشن میں کرامت انسانی کو کرامت یعنی شرافت انسانی، اخلاق انسانی، اس طرح کی باتیں. انگلش کا ٹرانسلیشن جائیں تو وہ ہیومن ایکسلنس، ہیومن ڈگنیٹی، ہیومن آنر اور نوبلٹی وغیرہ ہے. اس کے معنی کئی الفاظ کے بعد تھوڑی سی سمجھ آتی ہے کہ یہ ہے کیا چیز. قرآن اپنے ہی طرز بیان سے بیان کرتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے. حضرت سلیمان نے अपने मानने वाले जो दरबारों में हैं दरबार में हैं उनसे कहा कि मुझे वो तख्ते बिल्कीस चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए। चूंकि हजरत सुलेमान की हुकूमत जिन्नात पे भी थी इंसानों पे भी थी हवाओं में चरण में परन में। काला लदी काला इफरीत मिन अल जिन 39th आयत है सूरह नमल 27 चैप्टर है 27वां सूरा और 39 चैप्टर है। और आप लोगों से गुजारिश है कि रोजाना 10 आयतें तिलावत के साथ अपनी जिंदगी को मुनव्वर करें इंशाअल्लाह। जिन ने कहा कि मैं लाऊंगा मगर इतनी इजाजत दीजिए कि सेकंड सिटिंग तक। हजरत सुलेमान ने कहा ना फास्टर चाहिए मुझे। ये 40th आयत है जो पढ़ने जा रहा हूं मैं। وقال الذي عنده علم من الكتاب जिसके पास किताब का इल्म थोड़ा सा था उसने ये कहा انا آتيك به قبل ان يرتد طرفك मुझ में ये सलाहियत है कि तुम अभी पलक भी नहीं झपक पाओगे मैं लाऊंगा। अब ये नहीं मालूम आजकल मॉडर्न साइंस यहाँ पर जो है जो लोग हवा में काम करते हैं वो लोग भी बैठे होंगे सुन रहे होंगे कितनी स्पीड में आ सकता है एक मटेरियल। आज भी इतनी तरक्की नहीं हुई है जो उस वक्त तरक्की हो चुकी थी। इल्म किताब थोड़ा सा रखने वाला उसने कहा मैं लाऊंगा तुम्हारे पलक झपकने के फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। लखनऊ में मुझे उस बच्चे पे दुआ करता हूँ खुदा इंशाल्लाह तमाम बच्चों की हमारे नौजवान ये बैठे हुए हैं उनकी सलाहियतें उनके इल्म उनकी सलामती उनके ईमान की सलामती के लिए एक दुआ सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। उसने फौरन ही कंप्यूटर में बैठ कर के मजलिस के बाद वो मेरे पास आया मौलाना तकरीबन 1100 किलोमीटर दूर था चूँकि फलस्तीन में हज़रत सुलेमान और यमन में बिल्कीस। और उसने पूरा हिसाब करके बताया ये स्पीड थी और ये स्पीड से फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आने के माने के सिवाय लाइट स्पीड के कोई और चीज़ नहीं है इम्कान ही नहीं है कि सिवाय इस स्पीड के कोई ये चीज़ आ सकती है। तो कुरान एक ऐसी साइंस को पेश कर रहा है जो लाइट के स्पीड के साथ साथ चलती है। अभी तक हम लोग सो रहे हैं हम लोग मुसलमान इस बात में हैं कि मौला को क्या कहें हम इस बात पर हैं कि नमाज क्यों पढ़ें हम लोग इस छोटी छोटी चक्कर में पड़े हुए हैं साइंस वगैरह हमारे हाथ से निकल चुकी है। बहरहाल हजरत सुलेमान ने हाँ कहा वो उधर फलम्मा रआहू मुस्तकिरन इंदहू जैसे देखा तख्त बिल्कीस सामने आ चुका है। काला हजरत सुलेमान ने कहा हादा मिन फजल रब्बी ये सब कोई नहीं अल्लाह का फजल है। यही फर्क है जो दुनिया वाले जब कोई एबिलिटी को हासिल करते हैं कहते हैं ये मैं लेकिन इलाही निज़ाम में है कि जब भी हासिल करता है मैं नहीं अल्लाह। इसमें जमीन आसमान का फर्क है खुद ही अंडरस्टैंडिंग में जमीन आसमान का फर्क है। ताला हादा मिन फ़ज़ल रब्बी उसके बाद की आयत है जो मेरे आज के लिए शाहिद है करामत इंसानी से मुतालिक जो बहस कर रहा हूँ लियब्लुवनी अशकुर अम अकफुर ये अल्लाह ने सब ये हुकूमत जो मेरे हाथ में दी है अल्लाह ने क्यों दिया है ये इम्तिहान है कि मैं शुक्रिया अदा करूंगा या कुफरान नेमत करूंगा। सुलेमान ये कह रहे हैं कि नेमत जो अल्लाह ने मुझे दी है ये नेमत इसलिए कि मेरा टेस्ट हो कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह का या कुफरान नेमत जिन्हें करता हूँ। उसके बाद का टुकड़ा है वमन यशकुर इन नमा यशकुरो ले नफसे जो शुक्रिया अदा करेगा उसके लिए फायदा होगा वमन यकफुर इन ना हो गनी युन करी तवज्जो बहुत अच्छी तरह से अगर कोई शुक्रिया अदा ना करे थैंक्स अदा ना करे تو اللہ غنی بھی ہے، اللہ کریم بھی ہے، دو باتیں لفظ ہیں. اللہ کیا ہے؟ غنی. غنی کے معنی بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوان احد، اللہ الصمد ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. غنی تو سب جانے پہچانے. مگر اس کے بعد کریم بھی ہے. یہاں پر شکر کی ادا نہ کرنے والے کے ساتھ کریم کی لفظ یہ ہے، ہماری زندگی میں انٹریکشن میں ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ اس نے میرے ساتھ اچھا کیا تو میں اچھا کروں، اگر میرے ساتھ برا کیا تو میں اسے کیوں اچھا کروں. لیکن اللہ ایسا نہیں دیکھتا کہ وہ اس کے ساتھ اچھا کر رہا ہے یا نہ کر رہا ہے، مومن ہے یا کافر ہے یا منافق ہے، اس کی کرامت ہے. وہ کرامت، وہ کریم دیتا چلا جاتا ہے. اس سے پتا چل رہا ہے کہ کریم کے معنی وہ فضل ہے جو وہ ایبلٹی ہے جو سامنے والے کی دینے لینے سے تعلق نہیں رکھتا، اس کے وجود میں یہ بات موجود ہے کہ وہ کرامت کرے، کریم رہے. تو انسان بھی اس صفت کو حاصل کر سکتا ہے کہ اپنی فیملی میٹرز میں یہ نہ دیکھے کہ بیوی یہ کرے گی تو میں کروں گا، شوہر یہ کرے گا تو میں یہ کروں گا، بیٹا یہ کرے گا، نہ، وہ اپنی کرامت کو بتاتا رہے تو وہ پھر کریم کہلائے. یہ ہماری گفتگو ہے. آگے بڑھنے سے پہلے کل سے مربوط کرتے ہوئے بات ہے، میرے ساتھ ہیں نہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ ایک درود پڑے محمد والے محمد پر. ہم لوگ مثال چاہتے ہیں دنیا میں، مثالوں کے ذریعے سے سمجھتے ہیں، واقعات بہت مرتبہ سنتے ہیں، لیکن ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی گوشہ ہوتا ہے. سورہ دہر 76 چاپٹر ہے قرآن کا. سورہ دہر پورا نازل ہوا شہزادی کے اس روزے کے بعد گھر میں، آپ سب جانتے ہیں. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. حسنین علیہ السلام بیمار ہوئے، بخار آیا، تب آیا تو انہوں نے نظر کیا کہ بچوں کی صحت پر ہم لوگ روزہ رکھیں گے. گرمیوں کا زمانہ تھا، روزہ رکھا، اور جب شام کا وقت آیا، افطار کا وقت آیا، پانچ روٹیاں بنی تھیں اور گھر کی کنیز نے بھی روزہ رکھا تھا. توجہ بہت اچھی طرح سے، کنیز نے بھی اس نظر میں شرکت کی تھی. تو معلوم اسلام میں کنیز اور آقا کا کوئی سوال نہیں ہے. اسلام میں اگر کوئی چیز ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، مکرم کون ہے؟ جو تقوی رکھتا ہے، مکرم ہے، وہ کریم ہے. وہ روٹیاں پہلے دن، ویطعمون الطعام علی حبہ، اللہ کی محبت میں، کسی لین دین میں نہیں، محبت پروردگار میں، علی حبہ مسکین. مسکین کس کو کہتے ہیں؟ ہوم لیس کو کہتے ہیں، جس کا سکن نہ ہو اس کو کہتے ہیں مسکین. ویتیم آؤں، یتیم آرفن کو کہتے ہیں. اس کے بعد اسیر، مدینے میں کوئی اسیر نہیں تھا، بہت اچھی طرح سے سمجھیے. اسیر کیا ہے؟ اسیر یعنی جنگ جب ہوتی ہے مسلمان، اسلام اور کفر کے درمیان، اور مسلمان اگر کفار کے پاس چلے جائیں، یہ مسلم اسیر ہو گئے، تو مسلمان کوئی اسیر نہیں تھا مدینے میں. تو معلوم ہوا کون تھا اسیر مدینے میں؟ مسیح. اسیر مدینے میں کافر تھا، نان مسلم تھا، جنگیں جو نان مسلم سے ہو رہی تھی، وہ اسیر ہو کر کے آ رہے تھے. تو اس اسیر کو بھی گھر والوں نے کھلایا. تو جو بہت اچھی طرح سے، یعنی وہ مسلمان نہیں تھے، نان مسلم تھے، ان کو بھی روٹی کھلائے. اور ایک دوسرا نقطہ بحث ہے، اسیر گرفتار رہتا ہے، گرفتار رہنے والا دروازے پہ کہاں سے آئے گا؟ توجہ کا بات، معلوم ہے دروازے پہ یہ گھرانہ آئے تو دیتا نہیں ہے، ضرورت پہ اس کے پاس جا کے دیتا ہے. یہ کرامت اہل بیت، بہت اچھی طرح سے. یہ انتظار نہیں ہے کہ میرے گھر پہ آئے گا تو دے گا، نا، جب ضرورت محسوس ہوگی. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، نا، بہت بلند آواز سے درود پڑے محمد والے محمد پر، اللہم وعجل فرجہم. امام علیہ السلام راتوں کو اٹھتے تھے، روٹی بانٹتے تھے، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کون ہے یہ،
آپ نے کتنی مرتبہ سنا قصہ کہ ایک نابینا جو مولا کے شہادت کے بعد وہ قصہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ روتے ہوئے بیٹھا ہوا تھا, دعا کر رہا تھا پروردگار اس کو حیات دے, اس کو صحت دے, اس کو حیات دے, اس کو صحت دے. امام حسن نے پوچھا کس کے لیے دعا کر رہے ہو؟ میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں, روزانہ مجھے آ کر کے روٹی کھلاتا تھا. تو انہیں کھلانے والا انٹروڈیوس بھی نہیں کرا, میں علی کھلا, انہیں یہ بتایا نہیں کہ میں کھلانے والا کون ہوں. یہ ہے کرامت. ہم جب کوئی ڈونیشن وغیرہ کسی کی مدد کرتے ہیں تو پہلا نام کی چکر میں ہوتے ہیں. یہ نام کی چکر میں نہ ہونا ایک کرامت ہے. انسان اس مقام کو حاصل کرے. ابن عباس نے ایک روایت کی ہے, بہترین خوبصورت روایت ہے, کہ میں حج میں مکے میں تھا, حج کے بعد کا زمانہ ہے, یعنی رمضان کا مہینہ, اعتکاف کا زمانہ ہے. مولا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام طواف کر رہے تھے, ایک صلوات پڑھے محمد والا نام, یہ شرف تھا کہ میں بھی ساتھ ساتھ کوشش کر رہا تھا کہ مولا کے ساتھ ساتھ رہوں. اتنے میں ایک شخص آیا, سوال کرنے والا آیا, مولا میں مقروض ہوں, حالت طواف میں, اعتکاف جانتے ہیں, اعتکاف کے معنی جیسے ہی نیت کرتے ہیں اعتکاف آپ وہاں سے نکل نہیں سکتے, حالت اعتکاف میں ہیں اور طواف میں ہیں. آنے والا سائل نے سوال کیا, مولا میں مقروض ہوں اور میرا قرض ادا کیجئے. مولا نے کہا اس وقت میں حالت طواف میں, اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اس نے کہا مولا نہ, جس اگر آپ نہیں دیں گے تو مجھے گرفتار کر دے گا, مجھے وہ زندان میں ڈال دے گا, وہ پاورفل انسان ہے. مولا نے یہ سنتے ہی امام حسن نے فوراً ہی طواف کو چھوڑا, اسی حالت میں طواف کو چھوڑ دیا, چھوڑ کر اس کے ساتھ چلنے لگے. ابن عباس نے پوچھا مولا آپ حالت اعتکاف میں ہیں, حالت اعتکاف میں گھر سے باہر, اس مقام سے باہر, اس مسجد سے باہر آپ جا نہیں سکتے. مولا نے کہا کہ میں نے میرے نانا سے سنا ہے ایک محتاج کی مدد کرنا ان جیسے سو اعتکاف سے بہتر ہے. توجہ کا طالب ہوں, اعتکاف کی اہمیت قلیل ہے اس انسان کی جو محتاج ہے, اس کی مدد کرنا یہ کیا چیز ہے, اس کو معجزہ کہیں گے؟ نہ, یہ کرامت ہے انسانی. صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم. یہ موضوع کو ہم نے کیوں لایا, کیوں یہاں پر ٹورنٹو میں, ویسٹرن کنٹری میں, ساری دنیا والے سن بھی رہے, جو لوگ عموماً میرے مجالس کو سنا کرتے تھے کراچی میں, وہ لوگ سن رہے ہیں آن لائن, ان سے بھی گزارش کر, اس موضوع کے اس مقام پر لانے کی وجہ, ہماری زندگیوں میں ہم لوگ آج کل اتنے میٹیریلسٹک ہو چکے ہیں کہ یہ ہو تو یہ ہو, یہ ہو تو یہ ہو, ٹٹ فار ٹاٹ کہتے ہیں جس کو, جیسے اگر خدا نہ خواستہ کسی نے کسی برائی کی آپ کے ساتھ فوراً ہی جواب دے دیا. یہ دین اسلام نہیں ہے. اسی امام حسن کا قصہ ہے کہ مدینے میں ایک شخص آیا, پوچھا من انت, من انت, ہو آر یو, تو اس کے معنی کہ اسٹرینجر ہے, امام حسن کو جانتا کون نہیں ہے مدینے میں, لیکن سوال بتا رہا کہ وہ وہاں کا نہیں ہے. من انت, امام حسن نے فرمایا میں انا حسن ابن علی. جیسے ہی حسن ابن علی کا, آنے والا کہاں سے تھا, آنے والا شام کا تھا, سیریا کا تھا. سیریا میں بغض اہل بیت کا اتنا فیکٹری چل رہی تھی کہ 70,000 ممبروں سے سب علی ہوتا تھا, استغفراللہ, یعنی مولا علی پہ گالی بگی جاتی تھی, خطبہ جمعہ پورا نہیں ہوتا تھا جب تک کہ برا بھلا نہ کہا جائے مولا علی پر. اعجاز صلح امام حسن یہ ہے کہ آج 1400 سال بعد بھی کوئی سیریا میں ایک بچہ بھی نکلے گا نہیں کہ جو مخالف اہل بیت. یہ صلح امام حسن کا بہت بڑا معجزہ. بہرحال امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس شخص سے سنا, وہ بک رہا ہے گالی بکا, جب پورا ٹھنڈا ہو گیا تو مولانا نے فرمایا کہ تم اسٹرینجر معلوم ہو رہے ہیں, یقیناً تم جو ہیں مسافر ہو, چلو میں گھر کھاٹا کھلاتا ہوں. اب غور کریں, انالائز کریں, آج ہمارے پاس چھوٹی چھوٹی بات پر, خدا محفوظ رکھے, سپریشن ہو جا رہا ہے, طلاق ہو جا رہا ہے, پریشانیاں ہو رہی ہیں, روزانہ حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں. کیوں؟ کرامت انسانی ہمارے ہاتھ میں نہیں رہی, اور ہم لوگ جو وہ صفت کو, وہ ایٹریبیوٹ کو جو حاصل کرنا چاہیے وہ ہمارے پاس باقی نہیں رہا, اور آخرت کا سوال ہی باقی نہیں رہا, آخرت کے ریوارڈ کا سوال ہی باقی نہیں رہا. एक बहन ने मुझे बुलाया, टेली हाल ही की बात है, मैं अच्छी तरह से उस फैमिली को जानता हूँ, अच्छे अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं। उसने मुझसे बुला करके कहा, मेरे हालात अच्छे नहीं, मेरे हस्बैंड मेरे के दरमियान ज़रा हालात ख़राब हो रहे हैं, आप ज़रा इसको मेरे लिए बताइए, मेरे लिए नुस्खा बताइए कि क्या करूँ मैं। मैंने उस मोमिना से अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है कि जो बात कही वो मोमिना ने माना, और अल्हम्दुलिल्लाह वो फैमिली खुदा का शुक्र है कि सेफ है। मैं तो कहता हूँ कि हम लोग इधर उधर भागने के बजाय दीन की तरफ आइए, दुनिया भी मिलेगी, दीन भी मिलेगी, आखिरत भी मिलेगी। बहुत तवज्जो का तालिब। मैंने हदीस सुनाई, बहुत अच्छी तरह है मेरे साथ, आप लोग गौर करें। बहुत हदीस यह है कि मौला की हदीस है, जो जब भी अहले बैत की हदीस के माने सरकार की हदीस, हम और इतना अकीदा रखते हैं, काल अल बाकर के माने काल अल मोहम्मद, काल अल सादिक के माने काल अल मोहम्मद, इतने यकीन के साथ हम लोग इन अहादीस को बयान करते हैं। हदीस में मौला ने फरमाया, अगर मैं पहले ये जरा सा उलट के बयान करूंगा, अगर कोई औरत मर्द की बदखुल्की, आगे बढ़ने से पहले जरा सा करीम का अपोजिट लफ्ज हम सुन लीजिए उर्दू में, करीम का जिद जो है खसीस, उर्दू में यहाँ पर आप उतनी अच्छी रही नहीं रही उर्दू, मगर आप सुन लें, खसीस बेहतरीन लफ्ज है जिसको हमारे पास अरबी में लईम कहते हैं, करामत के मुकाबिल में लियामत। लियामत क्या है? खसासत। खसासत बहुत ही बुरी सिफत है इंसान की, खसासत जब आ जाए तो बहुत ही मुश्किल है उसकी बीमारी को हटा सके। ये इंसान की बीमारी है, इसका हल इंसानी माशरे में वही दे सकता है जो दीनदार हो, बता सके कि दीन के अहकाम क्या है। तो ये खसासत, अगर शौहर खसीस हो, हमेशा बदखुल्क हो, गुस्सावर हो, गाली बकता हो, डांटता हो हर मरतबा, मगर मोमिना अगर कोई औरत सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करती है कि घर महफूज रहे, घर अच्छा चले, घर अच्छा रहे, बच्चे अच्छे रहें, वो आज की दुनिया में जब जाएंगे किसी काउंसलर के पास, वो पहले ये बोलेगा कि ये तुम्हारा, यू हैव टू रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट, ये गलत है तुम्हारा ऐसा बोलने वाला, तुम्हारा शोर ठीक नहीं, फौरन छोड़ के जुदा हो जाओ, ये इज नॉट गुड। इस्लाम कहता है ना, जुदा होना कमाल नहीं है, उसके अंदर की बुराई जुदा कर देना कमाल है। तो जुदा हो जाना तो बहुत आसान है, ईजी है कि आप जुदा हो जाए। हदीस में मौला ने फरमाया, अगर कोई औरत मर्द की खसासत को बर्दाश्त करे, मर्द के जुल्म को बर्दाश्त करे और अपने घर को यूनाइटेड रखे, तो रोज कियामत हजरत आसिया के साथ महफूज हो। तवज्जो का तालब। यानी अब रोज कियामत क्या है? मैं खुसन मेरी नौजवान मेरी बेटियों से, आजकल की एग्जिस्टिंग यहाँ पर जो हालात हैं, सारे दुनिया में हालात है, उनसे गुजारिश करता हूँ, देखिए एक है दुनिया, ये दुनिया कितनी है? दुनिया दनी है, नीची चीज को कहते हैं दुनिया, बिल्कुल हकीर चीज को कहते हैं दुनिया। कितने दिन किया है? 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70-80, ज्यादा से ज्यादा 100। अभी किसी ने क्लिप भेजा था, एक पंजाब के साहब 111 के हैं, बता रहे थे अभी मैं शादी कर सकता हूँ, जहन हमारा या खाने और इसके अलावा कुछ और नहीं है। बहरहाल इंसान सलवार पड़े आली मोहम्मद वाजिल फरज है मेरे साथ, आप लोग गौर कीजिए बहुत अच्छी तरह से। उसने ये कहा कि हदीस ये कह रही है कि अगर कोई औरत इस तरह से इस माहौल में अपने आप को बर्दाश्त करके जिंदगी बसर करे, तो ये दुनिया कितनी है? 60 साल, 70 साल, ज्यादा सद एवरेज जो है दुनिया में 60 ईयर्स है, ठीक। बाप जाने वाली कितने हैं, कितने साल हैं? हम फिहा खालिदून, इटरनल है। इसीलिए खुलिक तुम लिल बका ला लिल फना, तुम पैदा हुए हो काहे के लिए? बका के लिए, फना के लिए नहीं है, फना तुम्हारे पास है ही नहीं है। इस्लाम क्या कहता है? जैसे कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, हर चीज फना होने वाली है, मतलब अल्लाह की जात फना होने वाली नहीं है। तो फिर ये हदीस कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, हदीस ये कह रही है कि तुम फना होने के लिए नहीं आए हो। तो मालूम कौन सी चीज है जो इंसान में जो फना होने नहीं देती? वो फना होने वाली ना देने वाली चीज है करामत। तो जो अगर इंसान करीम बन जाए, चूंकि अल्लाह से मिल रहा है, तो मैं मिसाल बच्चों को समझाने के लिए कहता हूं, मैं नुकता हूं, एक डॉट हूं, एक बल्कि कतरा हूं, तौहीद के मुकाबले में, ज़ात परवरदिगार के मुकाबले में मेरा ये हकीकत कुछ भी नहीं है, कतरा है। ये कतरा मैं यहाँ डालूंगा, थोड़ी देर में ऑपरेट हो जाएगा, इसको कहते हैं कहीं पता ही नहीं रहेगा, इसको कहते हैं फना। लेकिन इस कतरे को बाकी रखना हो तो क्या करूं मैं, इसको समंदर में डाल दूं मैं, तो जब समंदर में डालूंगा तो वो कभी खत्म ही नहीं होगा। इंसान अगर तौहीद के समंदर में अपने आप को डाल दे, वो कभी खत्म ही नहीं होता, वो हमेशा के लिए बाकी रहता है। यही कह रही है हदीस, अगर कोई औरत अपने तमाम शौहर की बदखुल्की को बर्दाश्त करते हुए करामत इंसानी को बाकी रखे और वो अपने घर की यूनिटी को बाकी रखे, तो उसकी इटर्नल लाइफ कितनी अच्छी हो गई। किसके साथ है? जनाबे आसिया। कौन जनाबे आसिया? जिसने कहा था रब्बी इब्नली इंदा का बैतन, मुझे घर नहीं चाहिए, तेरे पहलू में घर चाहिए। मैं कहा करता हूं मोमिन का जन्नत में जाना कमाल नहीं है, जन्नत में सरकार के साथ रहना कमाल है, जन्नत में अली के साथ रहना कमाल है, जन्नत में हुसैन के साथ रहना कमाल है, मुझे हुसैनी जन्नत चाहिए। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वअज्जिल फरजहुम, यह हदीस खूबसूरत हदीस है, जिंदगियों को बचा सकती है इंसान, और अगर समझे वैल्यू करे। वैल्यू क्या है? व्हाट इज दिस वर्ल्ड? नथिंग। बहुत जल्दी खत्म होने वाली, पेरिशेबल खत्म होने वाली है। और कौन सी चीज बाकी रहने वाली है, हमेशा रहने वाली? वयबका वजह रब्बिका दुल जलाल वल इकराम फबे अय्याला रब्बिकुमा तुकद्दबा। वो बाकी रहने वाली चीज है, मैटर नहीं है, वो कोई अच्छी चीज है। वो अच्छी चीज क्या है? करामत है। ऑन दी अदर हैंड, ये औरत के लिए, अगर कोई औरत इस तरह की फैमिली में जिंदगी बसर करे, मैं उम्मीद है कि सुनने वाले दुनिया वाले इसे सबक हासिल करें। मुझे अच्छी तरह याद है, मैम याद है कि 2001 या 2002 में कराची में मैंने प्री मैरिज सेमिनार्स पेश किया था, 800 नौजवान लड़के लड़की। एक नौजवान जोड़ा मेरे पास आया, मौलाना लास्ट दो मंथ पहले हमारी शादी हुई, लेकिन हालात हमारे अच्छे नहीं है। हमने देखा कि आपके पास ये कोर्स चल रहा है, हम शरीक हुए हैं, अगर कुछ मिल गया तो अच्छा है। मैंने कहा कि इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। कोर्स के तीसरे दिन मेरे पास आकर के वही जोड़ा, शुक्रिया अदा किया, मौलाना हमने तय कर दिया कि हम जिंदगी भर तक कभी जुदा नहीं। तो मैं ये बता रहा हूं, मैं हम लोगों को दीन के प्रस्पेक्टिव से वाकिफियत नहीं है। हम लोगों ने दीन को उस तरह से जैसे समझना चाहिए, हमने दीन से समझा ही नहीं है। हम दीन को सुपरफिशियल जानते हैं, दीन के डेप्थ से वाकिफ नहीं है। अगर डेप्थ से वाकिफ हो जाएंगे तो लज्जत जिंदगी होगी। जब औरत घर में मेहनत करेगी, हंडिया बनाएगी, उसको कभी तकलीफ नहीं होगी, वो करामत के तौर पर उसको महसूस करेगी, वो करीबाना आपके साथ पेश करेगी। और जब ऐसी होगी तो जनाब आसिया के साथ वो मशहूर होगी, यानी विलायत इलाहिया हासिल करेगी। अब आइए ऑन द अदर हैंड, अगर शौहर ज़ौजा के बदखुल्की खसासत को बर्दाश्त करे तो ज़ात परवरदिगार, ये हदीस मौला की हदीस है, ये ज़ात परवरदिगार किसके साथ महसूस करेगा उस शौहर को? उस शौहर को महसूस करेगा हजरत नूह के साथ। तवज्जो, कुरान ये कह रहा है कि दो पैगंबरों की बीवियां कानता तहता अब्दैन मिन इबादना, कौन है कौन? एक हजरत नूह की जौजा, एक हजरत लूत की जौजा। सूरह तहरीम 67 चैप्टर है, इब्तिदा में किस्सा है। ये किस्से कुरान में पढ़ने के नहीं है, इसको समझने के हैं। पैगंबरों के साथ रहने से भी करामत मिलती नहीं है, उनको ही मिलती है जो करामत हासिल करे। नूर आपको नूर नहीं देता जब तक कि नूर से आप इस्तेफादा करें। अगर आंख बंद कर लें तो आप ही अंधे रहेंगे। उसी तरह से अपने वजूद में जब तक वह सिफात को नहीं लेंगे, उस वक्त तक अहले बैत के करीब होने का दावा हमारा सही नहीं रहेगा। बहुत अच्छी तरह से, अगर कोई शौहर ज़ौजा की खसासत, ज़ौजा के जुल्म, ज़ौजा के बुराई को बर्दाश्त करके घर को यूनाइटेड रखता है, अगर इस हदीस पर अमल करें हजारों घर बच सकते हैं। और अगर दुनिया कबूल कर ले तो कहीं तलाक का मसला ही नहीं होगा, वेवलेंथ का मसला ही नहीं होगा, मसला होगा लव एंड केयर का। वो कब होगा? जब इंसानी अकदार करामतों तक। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। इसके बाद माने ये नहीं है कि कल से शौहर जो है खिसासा शुरू कर दे, ज़ौजा खिसासा शुरू कर दे। इसके माने ये हैं कि अगर खुदा ना खास्ता इस तरह की कोई कमी मौजूद है तो कम करने की कोशिश करे अपने आप को आखिरत के वो हमेशा रहने वाली दुनिया की तरफ अपना जिंदगी को मिलाने की कोशिश करे। तवज्जो की तालिब हूँ कि सरकार फरमा रहे हैं कि अगर कोई मर्द इस तरह की औरत को जिंदगी बसर करे। मैं तो एक चैलेंज और पेश करता हूँ, हम लोग 14 मासूमीन के मानने वाले हैं, 124,000 पैगंबरों के मानने वाले हैं, कोई एक पैगंबर का किस्सा सुनाइए जिसने तलाक दिया हो। जी ये किस्सा सुनाइए, कोई है कोई बता दे, मौला 14 मासूमीन में बताइए किसने दिया। और कुरान ये कहता है सरकार की जिंदगी के सिलसिले में का दो रसूल की बीवियां, हमें ना नाम है ना कुछ नहीं। कुरान ये कह रहा है फकत सबक सागत कुलूबा कुमा, ए रसूल की दो बीवियों तुम्हारे दिल टेढ़े हो गए। हमें मालूम नहीं है कौन है, मुझे बताना है। कुरान की आदत ही यही है कि कुरान जो है एक जनरल गुफ्तगू करता है, ये नहीं कहता कि कौन है। हम लोग नामों के चक्कर में ना जाएं। दो बीवियां ऐसी हैं जिनके दिल टेढ़े हो चुके थे मगर सरकार ने तलाक नहीं दिया। तलाक देना कमाल इंसानी है, नहीं है ना देना करामत इंसान। सलावत पढ़िए। इस मौजू को इंशाल्लाह और आगे बढ़ाएंगे और जरा समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग जब तक इस्लाम को अपनी जिंदगी से मरबूत नहीं करेंगे इस्लाम समझ में नहीं आएगा। सलावत पढ़िए। यह आवाजें आते रहना चाहिए कभी कभी। COVID-19 की वजह से रिस्ट्रिक्शन ऑफ पॉपुलेशन है, लेकिन यहाँ पर मलाइका भरे हुए हैं, तो आप लोग मलकों से कम नहीं है। दुरूद भी ऐसी पड़ी कि वैसे मालूम है कि दुनिया वालों को यहाँ पर हजारों का मजमा। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वाजिल फराजहुम, इस एक हदीस ने एक मोमिना के घर को बचाया। और जब भी बात करते मौलाना इस हदीस ने मुझे, जब भी खुदा ना खास्ता कभी मैं सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ ना आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। अगर आखिरत में इतना बड़ा रिवार्ड मुझे मिल रहा है तो इंसान इस करामत को हासिल करे। अब रहिए, अब और जरा सा आगे बढ़िए। अब्दुल्ला है बिन सल्त, अबा सल्त का नाम सुना है, उससे रावी है, उसने रिवायत की है मौला इमाम रदा अलैहि सल्लतु वस्सलाम। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसने रिवायत की, बलख के रहने वाले ने मुझे ये बताया कि मौला के साथ मैं सफर में था जब खुरासान मौला जा रहे थे। बहुत अच्छी तरह से गौर कीजिए, मौला के जब साथ था, मौला के साथ मवाली के माने हैं कुछ ऐसे जैसे आप कहते हैं कि हेल्पर वर्कर्स, काम करने वाले भी थे मौला के। जब लंच का मौका आया तो मौला ने उन, और चाहिए भी खास मिनस सूदान, हदीस में ये लफ्ज है मिनस सूदान, वो सूदानी थे, सूदान जिसको सूदान कहते हैं, सूदान से ताल्लुक, इसके माने कि अफ्रीकन। मौला के साथ चल रहे थे काम करने वाले। जब लंच का टाइम आया तो मौला ने दस्तरखान सबके साथ बिठा करके साथ बैठ गए मौला। ये बल्क का रहने वाला, उसने मौला से कहा कि आपका मुकाम देखिए, ये देखिए ये नौकर आपके, आप इनके साथ बैठकर आप खाना खाते, जरा सा दस्तरखान अलग कर दीजिए। आज हमारे पास कोई सीईओ आकर के कोई साथ बैठ के खाता है तो हम लोग जिंदगी भर तक उसकी तारीफ करते। अरे भाई देखो भाई वो ही इज डाउन टू अर्थ, ये बहुत ही अच्छा आदमी है, कैसा देखो हमारे साथ उठता है बैठता है, इसमें कोई इस तरह का गुरूर ही नहीं है। 1400 साल पहले इमाम अहले बैत के घर आने वाले ने ऐसी मिसाल दी है कि सूडान के लोग साथ हैं और वहां पर मौला ने दस्तरखान साथ खाया। तो जब उसने कहा कि मौला जुदा कर दीजिए, मौला को नागवार गुजरा जुमला, मौला ने कहा इस इनके माँ बाप भी आदमो हव्वा हैं, मेरे माँ बाप भी आदमो हव्वा हैं। अगर अल्लाह के नजदीक कोई मुकर्रम है तो उसका अमल है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह 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 अल्लाह। ये इंसानी अकदार को उस मकाम तक पहुंचाने का नाम है करामत। मैं और एक चीज पेश कर रहा हूँ, उम्मीद है कि आप लोग इस पे भी बहुत गौर करें इंशाल्लाह। और अच्छी चीज़ यह है कि रिकॉर्डेड होती है, अगर समझ में नहीं आती है तो आप फिर सुनिए, फिर इसको नौजवान जो है देखिए, जब तक कि हम लोग अमली मैदान में नहीं आएंगे तो इस्लाम को समझ में नहीं आएगा। ये कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, ये बहुत ही आयत का टुकड़ा है, وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ। अजीब और गरीब है टुकड़ा ये, ताकिद इसके माने यकीनन 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 अल्लाह मदद करता है, यकीनन 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 अल्लाह मदद करता है। किसकी? जो उसकी मदद करे। परवरदिगार की मदद? क्या अल्लाह मोहताज है? अल्लाह समद है, बेनियाज है। उसकी मदद क्या है? कि जो अल्लाह के दीन की मदद करता है। तो आज आप अखबार सुन रहे हैं कि रहबर की रहनुमाई वो मकाम पर आज हासिल कर ले, आज आहिस्ता आहिस्ता यूरोपियन कंट्री टूट रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो गलत हुआ है इनके साथ, तो पता चला कि अगर आप अपने पैरों पर बाकी रहें, अपने उसूलों पर बाकी रहें, दुनिया आपके कदमों पे आएगी, तो आप दुनिया के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। हदीस में है, एक मरतबा रिस्क के पीछे तुम दौड़ते हो, एक मरतबा रिस्क तुम्हारे पीछे जो होता है। वो कौन सा मकाम है? ये वो मकाम है जहां पर इंसान करामतों को बाकी रहे। जब फिजा शहजादी के पास आई, ये लफ्ज आई डोंट नो कहां से आया, उमूमन आमा के माने एक जो नौजवान लड़की को कहते हैं, जरूरी नहीं है कि कनीज हो, लेकिन हमारे पास तर्जमे जो हुए हैं जनाब फिजा को कनीज है फातिमा ज़हरा। लेकिन चूंकि घराना बहुत अजीम घराना है, जो आने वाला मारिफत रखने वाला अपने आप को गुलाम के तौर पर पेश करता था और अपने आप को औरतें कनीज के तौर पर पेश करती थी, हालांकि वो कनीज के तौर पर नहीं थी, एज ए मेड वर्कर थी शहजादी फातिमा ज़हरा। फर्स्ट डे आई है, तवज्जो बहुत अच्छी तरह से, आज वुमेन्स राइट फेमिनिज्म इतने सवालात उभरते हैं कि खुदा की पनाह। 1400 साल पहले एक औरत कहां की है? फिजा इथोपियन। तवज्जो, बाप ने बिलाल को दिया था, बेटी ने फिजा को दिया है। इथोपियन लेडी है, फर्स्ट डे आई है, शहजादी ने बरनामा बनाया, प्रोग्राम बनाया, उसके साथ पेश किया कि देखो तुम आई हो, एक दिन मैं काम करूंगी, एक दिन तुम काम करोगे। अब इसको एनालाइज कीजिए, यानी ह्यूमन बॉडी तुम्हारी भी है मेरी भी है, तुम भी थकती हो मैं भी थकती हूं। अहले बैत सुपर नेचुरल पावर को हमेशा बताते नहीं है, या बताते तो हमारे लिए नमूना ना होते, हमारे लिए एग्जाम्पल ना होते, वो एज ए एग्जाम्पल है। लकत काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतन हसना, उस्वे हसना काहे के लिए, ताकि उनको देख करके हम लोग अमल कर सके। तवज्जो, शहजादे ने कहा एक दिन तुम काम करोगी, एक दिन मैं काम करूं। ये हो गई बॉडी की नीड्स। मैंने कराची में जिस घर में था, मैं जिसमें रहता हूँ, माशाल्लाह जब भी जहाँ जाते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि मौलाना को जरा सा ठिकाने का घर हो, ठीक है, माशाल्लाह ठिकाने पर लगा देते जी, कोशिश है ना भी। तो अमूमन मैंने ये कहा है, हमारे पास जितने भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री नहीं, मुसलमानों की कंट्री के अंदर जो वर्कर्स हैं, अंदर एसी चल रहा है और बाहर जो है 27, 30, 35, 40 गर्मी है, और बेचारे का वो गेट पर रहने वाले मजदूर का जो कमरा है वो इतना छोटा है कि उसकी तस्वीर ही नहीं कर सकते। उसमें एक फैन चल रहा है जिसमें गर्म भाप मिलती है, कोई ठंडी नहीं मिलती, अंदर जो है माशाल्लाह एसी चल रहा है। तो ये इंसान ने क्या खता किया है? उसकी गुर्बत ने तुमको इस मकाम पे पहुंचा दिया। मगर अहले बैत का घराने की करामत यह है, इंसान को उन्होंने इंसान समझा, दस्तरखान पर भी बिठाया, न सिर्फ दस्तरखान मादी पर, इल्म के दस्तरखान पे भी बिठाया। देखिए बहुत अच्छी तरह से, कितने हमारे पास वर्कर्स को हम लोगों ने अपने बच्चों के साथ स्कूल भेजा हो, घर में लड़कियां काम करती हैं, 18 इयर्स 20 इयर्स की जवान बच्चे मैंने देखा कई मकान कई घरों में काम करती हैं। क्यों? बेचारी गरीब हैं, मेहनत कर रहे हैं, किसके पास? मौलाना मजदूरी करने के लिए आई हैं। शहजादी कह रही हैं कि आई हैं कौन फिजा काहे के लिए, काम करने के लिए मेरे पास। इसके दो हक हैं, एक जिस्म का हक है और इसका वो मानवी हक है, उसका रूह का हक है। जिस्म का हक भी मुझे अदा करना है, उसके रूह का हक भी मुझे अदा करना है। जिस्म का हक ऐसे अदा किया, एक दिन मैं काम करूंगी, एक दिन तुम काम करोगी, और रूह का हक ऐसे अदा किया कि फिजा को ऐसी तालीम दी, अब फिजा जबान से बात नहीं करती, कुरान से बात करती। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। समझ में आ रही है बात, हैवी है, मगर हम लोग ये फजाइल में, सो कॉल फजाइल कहकर के खामोश नहीं होना है। प्रैक्टिकलिटी है, एग्जांपल्स हैं जो अहले बैत ने अपनी जिंदगी में दिए हैं ताकि हम लोग इस जिंदगी में चलाएं, इस तरह से कहें, वरना अहले बैत को इन मुश्किलों से गुजरने की जरूरत ही नहीं थी। मौला इमाम हुसैन एक इशारा कर देते तहोबाला हो जाती थी दुनिया, मगर इशारा करने के बाद फिर इस्लाम इस्लाम ही नहीं रहता था। तो इस्लाम को असल उसूल दीन पर बाकी रखना इमाम, इसीलिए इन लम अखरुज बशर अशरन व बतरन व मुफसदन व ज़ालिमन इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मते जद। यह है करामत की, ये छोटी सी मिसाल है। हम लोग उर्दू में करामत को मौजूजे के तौर पर सुनते हैं, मगर कुरान ने करामत को कुछ और पेश किया, जैसे मैं मुसलसल पेश कर रहा हूं। अल्लाह करीम ने इंसान को तालीम दी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक्रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, उसके बाद क्या है, इक्रा व रब्बुकल अकरम, अल्लमल इंसान मालम, पढ़ाने वाला कौन, अकरम, लाने वाला कौन, कौन, करीम। जो किताब आई है वो क्या है, कुरान करीम। जो रसूल आया है जिस पर ये कुरान आ रहा है वो कौन है, रसूल करीम। ये जो सफरा ज़ाते परवरदिगार की तरफ से एम्बेसडर्स आए हैं, वह सफरतिन करमा कर, ये कौन है, पूरे के पूरे अंबिया करा करीम हैं, ये लोग करामतों को लेकर के आए हैं। ये करामतें इंसानी क्या है, जैसे आपने मिसाल आप देखी कि इंसान अपने अकदार को इतना बलद कर दे कि वो खत्म हो जाए मगर उसकी करामत खत्म ना हो। सलवात पढ़िए मोहम्मद। उन्हीं मिसालों में करबला के वाकया जितने भी हैं एजाज के तौर पर आपने कई मरतबा सुना है कि रास्ता रोकने वाला कौन था, और था उसने बाकायदा रास्ते को रोका था, चूंकि वो कमांड उसकी यजीद की आर्मी के साथ चला था, 1000 बटालियन का चीफ था। और यही वो शख्स है जो रास्ते में, अब आपको, हम लोग ऐसी दुनिया में रहते हैं जो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब थोड़ी सी थप्पड़ अल्लाह की तरफ से मिल रही तो जरा जरा कुछ समझ में आ रहा है कि दुनिया क्या है। डेजर्ट पे सफर करने वाले के लिए सबसे मुश्किल मसला पानी, और उनके लिए पानी के माने हैं आब हयात। अगर खुदा ना खासा डेजर्ट में सफर करने वाले के लिए अगर पानी खत्म हो जाए तो इसके माने की हयात खत्म हो गई, तो पहली चीज जिसको तलाश करते हैं वो लोग पानी। मौला इमाम हुसैन ने पड़ाव डाला है और उधर से हुर की आर्मी, सुनी आपने मेरी तरफ से, 1000 बटालियन के साथ घोड़ों के साथ आया है कत्ल के लिए, रोकने के लिए, रास्ता रोकने के लिए। जब मौला ने देखा कि प्यासे हैं, मौला ने कहा कि इन सबको पानी पिलाएं। एक रिवायत में है कि एक शख्स दौड़ता हुआ आया, इतना प्यासा था कि इमाम हुसैन ने अपने हाथ से मश्क लिया। अगर कोई आपके पास यूटेंसिल ना हो, कोई ग्लास ना हो, तो पानी कब लेंगे, पानी अगर पीना है तो आप अपना हाथ यूं रखेंगे, वो पानी डालने वाला पानी डालेगा। इमाम ने उसको अपने हाथ से मशकीजा लेकर के उसके मुंह को, मुंह पर पानी डालने लगे, वो पीने लगा, इतना प्यासा था कि वो कांप रहा था। तो मौला ने उसके सर को सीने से लगा, हम लोग छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, छोटी छोटी बातें हम हमको दूर कर देती हैं मराकिस से, अपने मकामात से। ये कौन सी करामत है कि ये ऐसी आर्मी जो आपको कत्ल करने के लिए आ रही है, खत्म करने वाले के लिए आ रही है, उस आर्मी के अफराद को मौला इस मेहरबानी से देख रहे हैं, ये करामत है। और करबला के दुरूस ये दरस ऐसे नहीं कि इसको मैं भूला दूं या ऐसे ना, असल हदफ यही है मजालिस में कि हम लोग इंस्पायर हों और वो रोशनी हासिल करें जिसके बाद ये रोशनी हमारी जिंदगी तक उनकी हमारी जिंदगी को बदले। खुदा इंशाल्लाह हमें तौफीक दे। बहुत अच्छी तरह से मौला ने किसी को बुलाया, किसी को रोक दिया। खत लिख के मौला ने बास को बुलाया, बास को कहा कि तुम नहीं मत आओ, वहीं रुको। तो मालूम हुआ करबला में, मैं हमेशा से कहता हूं कि करबला उस मकाम का नाम है जहां इस्लाम बीमार था। बीमार जब कोई होता है तो बाज वक्त दवा काम नहीं आती बल्कि ऑपरेशन करना पड़ता है, और जब ऑपरेशन किया जाता है तो खून की भी जरूरत होती है। खून हरे का मिलता नहीं है जब तक कि ग्रुप ना मिले। तवज्जो, करबला में इमाम हुसैन ने उन्हीं को लिया जो इस ग्रुप के हों, इस मकाम करामत को पहुंचते हैं। जब जनाब ज़ैनब ने देखा चार दूसरी मुहर्रम से लेकर हर थोड़ी देर को घोड़ों के टापों की आवाज आती है, तकबीरों की आवाज आती है, पूछती है फिजा मालूम करो कौन आया। शहजादी हजार फौज के साथ हो रहा है, 4000 फौज के साथ इब्न साद आया है। एक मरतबा शहजादी ने माजाए को बिठाया, मैं जब से आई हूं मैं हमेशा सुन रही हूं कि जो आता है आपके कातिल आपका खून का प्यासा आता है, क्या ये मुमकिन नहीं है कि कोई आपका चाहने वाला भी आ जाए। मौला ने खत लिखा अपने बचपने के दोस्त को, मिनल हबीब इलाल हबीब, रजुलन फकी, कूफे के हालात हिस्ट्री बताती है कि इतनी खराब थे कि जो सबसे ज्यादा बूमिंग बिजनेस था लोहार का बिजनेस, जिसको ब्लैक स्मिथ कहते हैं, जहां पर तीर बन रहे थे, तबर बन रहे थे, तलवारें बन रही थी, किसके लिए? नवासे रसूल के लिए। कूफा बहुत पूरा अशुभ हो चुका था। जब ये नामाबर लेकर के पहुंचा है हबीब के पास, हबीब अपनी जौजा के साथ शाम का खाने के लिए बैठे हैं, डिनर के लिए, दो लुकमे उठाए और जैसे ही लुकमा गिरा तो अरबों में यह होता था कि जब कभी इस तरह का वाक़ हो तो कोई कासिद आया चाहता है। दक्कुल बाब हुआ, पूछा मान अंता, आने वाले ने कहा अना बरीदुल हुसैन। जैसे ही बरीदुल हुसैन सुना, हबीब खड़े हो गए, दौड़े हुए दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजे को खोला, खत आया है। तेजी से खत को खोला, लिखा हुआ था हबीब सख्त जरूरत है कि तुम हमारी कुमक के लिए आ जाओ, मदद के लिए आ जाओ। बे अख्तियार हबीब की आंखों से आंसू जारी हुए कि फातिमा का लाडिला रसूलुल्लाह का नवासा हम जैसों को मदद के लिए बुला रहा है। देर तक रोए और आंसुओं को पेच पोच कर ना जाने क्या दिल में आया। जब वापस लौटे तो जौजा ने पूछा क्या बात है? कहा कोई बात नहीं, कहा ना कोई बात होगी। हबीब ने कहा ये बात है, कहा क्या इरादा है? कहा सोच रहा हूँ तुम्हारा क्या होगा। कहा मेरा ख्याल मत करो, जाओ ये बेहतरीन मौका है, जाओ मदद मौला के लिए निकलो। हबीब कहते हैं कि इतना पुराशुभ जमाना था कि हर तरफ जासूस लगे हुए थे, तो इसीलिए मैंने अपने गुलाम से कहा कि घोड़े को लो और ये घास और मेरे मजरा के पीछे पीछे के रास्ते से फला मकाम पे ठहरो और मैं वहां पे पहुंचूंगा। हबीब दूसरे रास्ते से पहुंचते हैं, जब हबीब कहते हैं जब करीब मैं पहुंचा हूं तो घोड़ा घास से मुंह उठा चुका था और गुलाम ये कह रहा था अगर मेरा आका तुझ पर बैठ कर हुसैन की मदद के लिए नहीं जाता तो मैं खुद बैठ कर जाऊंगा। हबीब अपने चेहरे को पीटते हैं, इतना क्या सख्त वक्त आ गया है कि एक गुलाम भी बेचैन है हुसैन की मदद के लिए। امام حسین روز عاشور علم دے رہے ہیں, سب کے ہاتھ میں ایک علم باقی ہے. کسی نے کہا مولا دے دیجئے, مولا نے کہا اس کا حقدار ابھی آیا ہی چاہتا ہے. ایک مرتبہ کوفے کی طرف گرد و غبار ابھری, مولا نے کہا عباس جاؤ استقبال کرو, آواز تکبیروں کی آئیں. ایک مرتبہ زینب نے فضا سے پوچھا, فضا معلوم کرو کون آیا ہے. فضا واپس آئی, شہزادی مبارک ہو مبارک ہو, کون آیا ہے. ایک مولا کا بچپنے کا دوست حبیب آیا ہے. زینب نے کہا جاؤ فضا میرا سلام سنا دو. جب فضا لوٹ کر آتی ہے, حبیب تم کتنے خوش قسمت ہو کہ فاطمہ کی بیٹی تمہیں سلام کر رہی ہے. فضا کے اس سلام پر حبیب نے منہ پہ تماچے مارے, اے پروردگار آل محمد پر ایسا وقت آ گیا. میں کہوں حبیب یہ سلام ہے شہزادی زینب کا, تم بے چین ہو رہے ہو, شام غریبہ ہوگی جب کہ زینب پکار رہی ہوگی بابا صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك وناخت برحلك علیکم من السلام ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا. والله خدایا ہمارے ان آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے, آئندہ گناہوں سے تو اپنی ید قدرت سے بچا لے. پروردگارا ہمارے نفسانی کرامتوں میں اضافہ فرما, ہمارے دلوں کے اتنا بزرگ کر دے کہ ہم چھوٹی باتوں میں الجھے نہیں. خدایا پروردگارا ہمارے اور آئندہ آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما. پروردگارا بحق محمد والے محمد پرچم اسلام کو بلند فرما, دشمنان اسلام کو دہشت گردوں کو دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے. مظلومین مومنین کی مدد فرما, مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما. مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کے جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما. جو پریشان حال ہیں انہیں پریشانیوں دور فرما, بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما, مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما. جو بیمار خصوصاً کووڈ 19 کے حوالے سے یا کسی اور بیماری کے حوالے سے جنہوں نے التماس دعا کہا, ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما. ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما. جو گودیاں خالی ہونے پر کر دے, جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ہیں ان کی بیاہ کر دے. صفوف مسلمین کو متحد کر دے, ہمیں بانٹنے والی صہیونی قوتوں کو بانٹ دے. خدایا پروردگارا ہمارے مرحومین کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے. مالک پروردگار انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے. مراجع رہبر کے سائق ہمارے سروں پر سلامت رکھ, جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما. ماتم حسین یا حسین, بولتے رہیے یا حسین یا حسین یا حسین.
یا حسین 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 یا حسین. سب جواب دیں. یا حسین 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 یا حسین. کربلا جا میرے حبیب میرے دوست 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 کربلا جا میرے میرے حبیب میرے دوست کربلا جا میرے حبیب میرے دوست کربلا جا میرے حبیب میرے دوست کربلا جا میرے تمہیں بلاتا ہے زہرا کا لاڈلا جا میرے حبیب میرے دوست کربلا جا
سب جواب دیں
میرے حبیب میرے دوست کربلا
تمہیں بلاتا ہے زہرا کا لاڈلا جا میرے حبیب میرے دوست کربلا جا تمہارے آنے سے صحرا میں مجھ کو چین ملے ملے حسین سے تو اور تجھے حسین ملے نہ دیر ابن مظاہر تو اب لگا جا میرے حبیب میرے دوست کربلا جا
میرے حبیب میرے دوست کربلا جا
تمہارے آنے سے صحرا میں مجھ کو چین ملے ملے حسین سے تو اور تجھے حسین ملے نہ دیر ابن مظاہر تو اب لگا جا میرے حبیب میرے دوست کربلا
میرے حبیب میرے دوست کربلا
میرے حبیب میرے دوست کربلا جا
میرے حبیب میرے دوست کربلا
نبی کے لال سے امت نے منہ ہی پھیر لیا سلگتے دشت میں ابن بطول گھیر لیا کٹھن ہے بخت بھلا میرے ہم نوا جا میرے حبیب میرے دوست کربلا جا میرے حبیب تمہیں بلاتا ہے زہرا کا لاڈلا جا میرے حبیب میرے دوست کربلا جا
میرے حبیب میرے دوست کربلا جا
علی کی بیٹیاں ہمراہ میرے آئی ہیں بچان دین وہ بچے بھی ساتھ لائے ہیں اگر تو آئے بڑھے ان کا حوصلہ جا میرے حبیب میرے دوست کربلا جا
میرے حبیب میرے دوست
حبیب میرے دوست کربلا جا تمہیں بلاتا ہے زہرا کا لاڈلا جا میرے حبیب میرے دوست کربلا تقیر اپنے وطن کو حبیب نے چھوڑا زمان سار کو سے خوش نصیب نے چھوڑا جو خط میں مولا کا لکھا ہوا پڑا جا میرے حبیب میرے دوست کربلا جا میرے حبیب میرے دوست تمہیں بلاتا ہے زہرا کا لاڈلا جا میرے حبیب دوست کربلا جا میرے حبیب میرے دوست کربلا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حبیب کربلا جاؤ اب خدا کے لیے 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 حبیب کربلا زمین تنگ ہوئی ابن فاطمہ کے لیے حبیب کربلا جاؤ اب خدا کے لیے حبیب کربلا جاؤ اب خدا کے لیے حبیب کربلا جاؤ ہر ایک سکھ میں ہر ایک دکھ میں تم رہے ناصر خدا نے زندگی دی ہے تمہیں میری خاطر تمہیں تو رب نے بنایا ہے کربلا کے لیے حبیب کربلا جاؤ اب خدا کے لیے حبیب کربلا اب خدا کے لیے ہر ایک سکھ میں ہر ایک دکھ میں تم رہے ناصر خدا نے زندگی دی ہے تمہیں میری خاطر تمہیں تو رب نے بنایا ہے کربلا کے لیے حبیب کربلا جاؤ حبیب کربلا جاؤ سفر پہ نکلے ہیں ہم لوگ چھ مہینے سے حبیب لوگوں کے دل بھر چکے ہیں کینے سے ستم یہ کم تو تو نہیں آلے مصطفیٰ کے لیے حبیب کربلا جاؤ حبیب کربلا جاؤ اے دعائیں مانگ کے ایک دن تمہیں جلایا تھا میرے حبیب دوبارہ وہ وقت آ پہنچا میں ہاں حسین ہاتھ اٹھاتا ہے اب دعا کے لیے حبیب کربلا جاؤ اب خدا کے لیے حبیب کربلا جاؤ دعائیں مانگ کے ایک دن تمہیں جلایا تھا میرے حبیب دوبارہ وہ وقت آ پہنچا حسین ہاتھ اٹھاتا ہے اب دعا کے لیے حبیب کربلا جاؤ حبیب کربلا جاؤ سلام کہتی ہے زینب حبیب آ جاؤ زیادہ وقت نہیں اب حبیب آ جاؤ تلا ہے لشکر بے پیر اب جفا کے لیے حبیب کربلا جاؤ اب خدا کے لیے حبیب کربلا جاؤ تمہیں بھی شوق عبادت ہے اور ہم کو بھی تمہیں بھی شوق شہادت ہے اور ہم کو بھی ہیں بچپنے سے ہی ہم تذر قضا کے لیے حبیب کربلا جاؤ اب خدا کے لیے حبیب کربلا جاؤ شرف یہ ذل رضا ہے حبیب نے پایا کہ خود بتول کے بیٹے نے خط یہ بھیجوایا حبیب کربلا آ جاؤ اب خدا کے لیے حبیب کربلا آ جاؤ اب خدا کے لیے حبیب کربلا جاؤ اب خدا کے لیے زمین تنگ ہوئی ابن فاطمہ کے لیے حبیب کربلا جاؤ اب خدا کے لیے حبیب بلا جاؤ اب خدا کے لیے یا
حسین توجہ زیارت السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس يا أيها المدفون بأرض طوس، السلام عليك يا علي بن موسى الرضا راز بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا صاحب الأسر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى محمد.
देख लो एक बार।